नमस्कार। तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है मिन जिन ली की, मतलब एक जबरदस्त किताब, पचिंको। ये महज एक उपन्यास नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास की बड़ी बड़ी लकीरें एक आम परिवार की कई पीढ़ियों की तकदीर बन जाती हैं।
बिल्कुल सही कहा। और इस कहानी की आत्मा को समझने के लिए मुझे लगता है इसकी लेखिका मिन जिन ली को जानना बहुत जरूरी है।
हाँ,
वो पैदा तो हुई दक्षिण कोरिया के सियोल में, लेकिन पली बढ़ी न्यूयॉर्क में। तो ये जो दो संस्कृतियों के बीच का अनुभव है ना,
वही उनके लेखन में उतर आया।
हाँ बिल्कुल, वो कोरियाई प्रवासियों के दर्द को, उनकी उम्मीदों को, उनके संघर्ष को इतनी गहराई से लिखती हैं कि लगता है हम उन किरदारों के साथ जी रहे हैं।
और किताब का नाम पचिंको, मतलब कितना अनोखा और गहरा है।
बहुत ज्यादा। पहली नजर में तो ये जापान का एक एक गैम्बलिंग खेल लगता है।
हाँ, जिसमें स्टील की छोटी छोटी गेंदें होती हैं जो पिनों से टकराती हुई नीचे गिरती हैं, और उनकी मंजिल वो तो बस किस्मत तय करती है।
और असल में यही तो इस उपन्यास का सार है।
वही तो।
ये उन लोगों की जिंदगी का प्रतीक है जिनकी किस्मत उनके हाथ में नहीं होती। वो भी उन स्टील की गेंदों की तरह है जिन्हें इतिहास, समाज और सियासत के पिन मतलब इधर उधर धकेलते रहते हैं।
वो कहाँ जाकर गिरेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, सब कुछ भाग्य के भरोसे है। तो आज हम इसी खेल की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे।
और सुंजा नाम की एक लड़की और उसके परिवार की चार पीढ़ियों की इस लंबी यात्रा को समझेंगे।
तो चलिए इस दास्तान की शुरुआत करते हैं। कहानी हमें ले चलती है 1910 के दशक के कोरिया में, जब उस पर जापान का शासन था।
ये योंग दो नाम का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव है जहां हमारी मुख्य पात्र सुंजा रहती है।
अच्छा।
सुंजा एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी लड़की है। उसके पिता हूनी जन्म से ही कुछ शारीरिक अक्षमताओं के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
हाँ, वो अपनी मेहनत और स्वाभिमान से अपना परिवार चलाते हैं।
बिल्कुल, सुंजा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। उसकी दुनिया बहुत छोटी और महफूज है। पर कहते हैं ना, तूफान आने से पहले समंदर अक्सर शांत ही होता है।
और वो तूफान आता है को हांस नाम के एक अमीर और ताकतवर व्यापारी के रूप में।
हाँ, हांस शादीशुदा है, उम्र में भी सुंजा से काफी बड़ा है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण है कि भोली सुंजा उसकी तरफ खींची चली जाती है।
और फिर दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है और नतीजा ये होता है कि सुंजा गर्भवती हो जाती है।
बस यहीं पर सुंजा की दुनिया एकदम शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है
जब उसे पता चलता है कि हांस
कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। जब वो हांस को ये खबर देती है तो वो बताता है कि जापान में उसकी बीवी और तीन बेटियां हैं।
और वो उसे अपनी रखेल बनाकर रखने की पेशकश करता है ना?
हाँ, कहता है कि उसे और उसके बच्चे को हर तरह की सुख सुविधा देगा।
ये उस दौर के समाज में किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। एक अविवाहित माँ बनना मतलब समाज से बेदखल हो जाना, अपने परिवार के नाम पर कलंक लगा देना।
उसके सामने एक ऐसा अंधेरा कुआं था जिसमें सिर्फ जिल्लत और बदनामी थी। पर वो हास की पेशकश ठुकरा देती है। वो अपने बच्चे को एक नाजायज पहचान नहीं देना चाहती थी।
और यहीं पर उसका किरदार पहली बार अपनी असाधारण हिम्मत दिखाता है।
और जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब कहानी में एक फरिश्ते की तरह एंट्री होती है, पादरी बाइक इसाक की।
बाइक इसाक।
हाँ, इसाक एक नौजवान आदर्शवादी ईसाई पादरी है जो तपेदिक की बीमारी से जूझ रहा है और सुंजा की माँ के बोर्डिंग हाउस में आकर ठहरा है। वो बहुत बीमार है, कमजोर है, लेकिन उसकी आत्मा बहुत मजबूत है। और उसे जब सुंजा की हालत का पता चलता है तो वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो सुंजा से शादी करने और उसके बच्चे को अपना नाम देने का प्रस्ताव रखता है।
ये जानते हुए भी कि बच्चा उसका नहीं है।
हाँ, वो ये भी जानता है कि सुंजा उससे प्यार नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ इंसानियत और करुणा के नाते कदम उठाता है।
और सुंजा का ये एक फैसला कि वो ईसा के साथ जापान जाएगी, यहीं से सब कुछ बदल जाता है।
वो अपनी मिट्टी, अपना देश, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जहां हर मोड़ पर एक नया संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था।
और उस नए देश में जापान में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।
हाँ, जापान पहुंचकर सुंजा को असलियत का सामना करना पड़ता है,
जहां कोरियाई लोगों को ज़ाइनीची कहा जाता था
और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उनके साथ हर जगह भेदभाव होता था। ईसा एक नेक इंसान था, पर दुनियादारी की समझ उसमें कम थी। तो ऐसे में परिवार को संभालने का पूरा बोझ भोली भाली सुंजा के कंधों पर आ जाता है।
पर वो लड़की जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी,
अब ओसाका के बाजार में किमची बेचती है। वो एक माँ बनती है, एक पत्नी बनती है, और हालातों से लड़ते लड़ते मतलब पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। वो त्याग और हिम्मत की एक मिसाल है।
वो अपने दो बेटों नोआ और मुजासू को पालने के लिए दिन रात एक कर देती है। यहीं पे कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। एक ही माँ, एक ही छत के नीचे पले बड़े दो भाई नोआ और मुजासू, लेकिन अपनी कोरियाई पहचान को लेकर दोनों के रास्ते इतने जुदा क्यों हो गए? ये इस उपन्यास का एक बहुत ही जरूरी सवाल है।
बिल्कुल। नोआ बड़ा बेटा, जो असल में कोहांस का बेटा है, वो अपनी कोरियाई जड़ों को एक एक दाग, एक कलंक की तरह देखता है।
उसे लगता है कि अगर वो एक आदर्श जापानी नागरिक बन जाए, अच्छी जापानी भाषा बोले, अच्छे कपड़े पहने, तो शायद समाज उसे अपना लेगा।
हाँ, और जापान के सबसे प्रतिष्ठित वासेदा विश्वविद्यालय में दाखिला ले ले।
वो अपने पिता पादरी इसाक को अपना आदर्श मानता है और उनकी तरह ही नेक और पढ़ा लिखा बनना चाहता है। असल में नोआ उस समय के हजारों कोरियाई युवाओं की मानसिकता को दिखाता है। जापान की सरकार की एक नीति थी जिसे कुमिंका कहते थे।
अच्छा।
जिसका मकसद था कोरियाई लोगों को आत्मसात करके उनकी अपनी पहचान मिटा देना। नोआ उसी नीति का एक, आप कह सकते हैं, जीता जागता शिकार है। वो अपनी पहचान से इतनी नफरत करता है कि उसे मिटा देना चाहता है।
जबकि छोटा बेटा मोजासू, जो इसाक का अपना खून है, वो इसके बिल्कुल उलट है।
हाँ, वो हकीकत को स्वीकार कर चुका है।
बिल्कुल। वो जानता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जापानी समाज उसे कभी पूरी तरह नहीं अपनाएगा। इसलिए वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर उस दुनिया में कदम रखता है जहाँ कोरियाई लोगों को काम मिल सकता था,
यानी पचिंको पार्लर की दुनिया में।
हाँ,
और यही तो विडम्बना है ना। पचिंको उद्योग को जापानी समाज में बहुत इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन यही वो जगह थी जिसने कोरियाई प्रवासियों को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका दिया।
सही कहा। मोजासू दुनियादारी समझता है, वो अपनी पहचान के साथ सहज है।
लेकिन कहानी का सबसे, मैं कहूंगा, दिल दहला देने वाला मोड़ तब आता है जब नोआ को
जब नोआ को अपने असली पिता का सच पता चलता है।
हाँ,
वो वासेदा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है।
हाँ,
अपनी बनाई हुई जापानी पहचान में जी रहा है, और तभी उसे पता चलता है कि उसका पिता कोई नेक पादरी नहीं बल्कि को हासिस है,
एक याकूजा, यानी जापानी अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम।
जब मैंने पहली बार पढ़ा कि नोआ को ये सच पता चलने के बाद क्या होता है, तो ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था।
अपनी पहचान से इतनी नफरत
कि कोई अपनी जान ले ले।
हाँ, ये दिखाता है कि भेदभाव का असर किसी इंसान की आत्मा पर कितना गहरा हो सकता है।
ये सच उसकी मेहनत से खड़ी की गई पहचान की पूरी इमारत को एक झटके में गिरा देता है।
हाँ।
गंदे खून की शर्म उसे अंदर तक तोड़ देती है। वो अपनी माँ, अपने भाई, अपने परिवार,
सबसे रिश्ता तोड़ देता है।
हाँ, और कहीं गुमनामी में चला जाता है, एक जापानी नाम रखता है, एक जापानी लड़की से शादी करता है, और सालों तक एक झूठी जिंदगी जीता है। लेकिन जब कई सालों बाद उसका अतीत उसे ढूंढ निकालता है, तो वो उस शर्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है।
नोआ की कहानी आत्मघृणा की एक दर्दनाक दास्तान है।
बहुत दर्दनाक।
और परिवार पर सिर्फ यही एक मुसीबत नहीं आती। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसाक को उसके ईसाई विश्वासों के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है,
और जेल में ही उसकी मौत हो जाती है। सुंजा का परिवार बिखर जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती।
और यहीं पर कोहोहांस का किरदार और भी पेचीदा हो जाता है ना।
बिल्कुल। वो एक छाया संरक्षक की तरह बिना सामने आए मुश्किल वक्त में सुंजा और उसके परिवार की मदद करता रहता है।
हाँ, आप कोहोहांस को ना तो पूरी तरह से विलन कह सकते हैं, ना ही हीरो।
वो एक ऐसा किरदार है जो दिखाता है कि अच्छे और बुरे के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। वो सुंजा की जिंदगी बर्बाद करता है, लेकिन फिर उसे बचाता भी है। ये नैतिक दुविधा कहानी को और गहरा बना देती है।
फिर कहानी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, मोजासू का बेटा सोलोमन।
सोलोमन उम्मीद की एक नई किरण जैसा है।
बिल्कुल। वो अमेरिका में पढ़ा लिखा है, अमीर है, फराटेदार अंग्रेजी बोलता है और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फर्म में काम करता है।
उसे देखकर लगता है कि शायद इस पीढ़ी ने उस भेदभाव और संघर्ष के चक्र को तोड़ दिया है जिसके लिए उसके दादा दादी और पिता ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी।
लेकिन ऐसा होता नहीं है।
नहीं, सोलोमन को भी जल्दी एहसास हो जाता है कि उसका पैसा, उसकी अमेरिकी डिग्री, ये सब भी उसे उस भेदभाव से नहीं बचा सकता जो उसकी रगों में दौड़ रहे कोरियाई खून की वजह से उसे मिलता है।
उसे एक रियल एस्टेट डील के दौरान एक ऐसे नैतिक दौराहे पर खड़ा कर दिया जाता है जहां उसे अपनी जड़ों, अपने परिवार की विरासत और अपनी असली पहचान की, कह सकते हैं, कीमत समझ आती है।
हाँ, और ये उपन्यास के एक बहुत गहरे संदेश को दिखाता है
कि सामाजिक तरक्की कई बार सिर्फ एक छलावा होती है। भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो एक या दो पीढ़ी की सफलता से खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती हैं।
अगर हम उपन्यास के दिल की बात करें तो इसकी शुरुआत में ही लेखिका ने एक लाइन लिखी है, इतिहास ने हमें नाकाम कर दिया लेकिन कोई बात नहीं।
हिस्ट्री हैज फेल्ड अस बट नो मैटर।
हाँ, ये एक लाइन नहीं, पूरे उपन्यास का DNA है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जिन्हें इतिहास के बड़े बड़े फैसलों ने बेघर और बेपहचान कर दिया,
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो लेकिन कोई बात नहीं वाला जो हिस्सा है, वही उनकी जिंदा दिली और कभी ना टूटने वाले हौसले का सबूत है।
और परिवार का विषय भी कितना अहम है। ये उपन्यास बताता है कि परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं बनता,
ये वफादारी, प्यार और साथ मिलकर झेले गए संघर्षों से बनता है।
बिल्कुल, सुनजा और उसकी ननद क्यूंगी का जो रिश्ता है वो इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है।
हम पहले से ही आपके खिलाफ बनाए गए हैं। आप एक स्टील की गेंद है जिसे ऊपर से छोड़ दिया जाता है। नीचे सैकड़ों पिन हैं जो आपका रास्ता रोकेंगी, आपको भटकाएंगी।
जैकपॉट लगने की उम्मीद बहुत कम है,
लेकिन फिर भी आप खेलते रहते हैं। सुनजा, नोआ, मोजासू, सोलोमन, ये सब उस खेल के खिलाड़ी हैं जो बस एक बेहतर मौके की उम्मीद में खेलते जा रहे हैं।
पाचिंको हमें याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं का बोझ आखिर में आम परिवारों के कंधों पर ही आता है।
और ये कहानी इस बात का सबूत है कि भले ही बाहरी दुनिया आपकी इंसानियत को नकार दे, प्रेम, स्मृति और परिवार की ताकत एक ऐसा घर बना सकती है जिसे कोई नहीं छीन सकता।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एगेथर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।